हरिभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः
साधु जी बोले कि सैनिक ये नरक का द्वार है। जैसे उसने सुना उसके हाथ से तलवार छूट गई, वह सैनिक जमीन पर लेट गया, गुरु चरणों में प्रणाम करने लगा। साधु जी बोले कि यह स्वर्ग का द्वार है। बात स्पष्ट हो गई होगी, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। हम अपनी ही प्रवृत्तियों के द्वारा नरक का रास्ता निकाल लेते हैं, हम अपनी ही प्रवृत्तियों के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल लेते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम यहां पर एक मनुष्य की तरह पैदा हो गए हैं और मनुष्य होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मात्र मनुष्य की तरह पैदा हो जाने से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्यता उसके भीतर होनी चाहिए। मनुष्यता के सद्भाव में ही मनुष्य की शोभा है, अन्यथा मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद सारा समय यूं ही गुजर जाता है, जिंदगी समाप्त हो जाती है और हम एक मनुष्य भी नहीं बन पाते। अपने जीवन में और कुछ बनना तो बहुत दूर की बात। जिस नसीहत से हम यहां पैदा होंगे हम वो भी नहीं बन पाए। हम धर्मात्मा बनने की बात करें, हम परमात्मा बनने की बात करें, कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन मात्र बात करने से कोई धर्मात्मा और परमात्मा नहीं बनता। बल्कि हम जो हैं, जिस रूप में हम आए हैं, यदि उतने भी हम हो गए तो भी हमारा यह जन्म लेना सार्थक होगा, अन्यथा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मनुष्य का यह शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है। कितनी दुर्लभता के साथ यह शरीर हमें प्राप्त होगा शायद इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें बड़ा आसान और सरल से लगता है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना, लेकिन वो भी जानते होंगे, इसका एहसास वे लोग भी करते होंगे जो अनंत काल से निरोगादी परिवार में जिन्होंने अपना समय बिताया हो और बहुत दुर्लभता के साथ उन्हें मनुष्य का यह शरीर प्राप्त होगा हो, वो भी इस दुर्लभता को समझ सकते हैं। हमें ऐसे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर इसके जो बहुमूल्य क्षण हैं इनका सदुपयोग कर लेना चाहिए। कुछ हमें अपने लिए, अपनों के लिए इस समय का उपयोग कर लेना चाहिए। कुछ हमें अपना काम कर लेना चाहिए, अपना कुछ विकास कर लेना चाहिए, अपने को कुछ बना लेना चाहिए। यहां जन्म लेने के बाद दो बात हुआ करती हैं। दो तरह से आदमी यहां पैदा होने के बाद दो तरह से अपना जीवन बिता देते हैं। एक तो जीवन निर्माण और दूसरा जीवन निर्माण। जीवन निर्माण और जीवन निर्वाह के लिए किसकी आवश्यकता है? जैसे यहां जितने भी पैदा होते हैं, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के, नारकी से लेकर के देव तक और तिरंत से लेकर के मनुष्य तक के समूचे प्राणी यह जन्म लेने के बाद अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। निर्वाह करना बहुत कठिन नहीं है, निर्माण करना बहुत सरल है। भले ही आपको लगता हो कि निर्माण करने के लिए हमें कितने कितने साधनों की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर के हमारा जीवन चलता है, लेकिन विचार करिए, सोचिए कि एक जीवन निर्माण के लिए हम जितना परिश्रम और जितना पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं,
इतने कठिन परिश्रम के भी आवश्यकता तो नहीं है उस जीवन निर्वाह के लिए। लगता है हमारे कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ किसी दूसरे लक्ष्य की तरफ है, किसी और को बनाना चाहता है, किसी और को पाना चाहता है, इसीलिए इतना कठिन परिश्रम कर रहा है। जबकि जीवन निर्वाह के लिए मात्र तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वे तीन चीजें अभी मिल जाएं तो व्यक्ति का जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाता है। पेट भरने के लिए भोजन, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, उससे छुपाने के लिए कोई झोपड़ी या कोई एक मकान, ये तीन चीजें व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हैं। चौथी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हमने ये तीन चीजें जुटा ली है। पेट के लिए भोजन जुटा लिया है, तन के लिए वस्त्र जुटा लिए हैं, उससे छुपाने के लिए हमने मकान भी बना लिया है। और इतना करने पर हमने बहुत पुरुषार्थ किया है। हम अपने आप को बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद इतना हासिल कर पाए ऐसा समझते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। यदि मात्र अपने जीवन में हम ये वस्त्र भोजन और मकान ही जुटाते रहे और इस जुटाने में ही सारा जीवन समाप्त कर दिया, तब पर हमारा यह जीवन प्राप्त करना और न करना कोई मायना नहीं रखता। इतने साधन तो वो पशु पक्षी भी जुटा लेते हैं। पक्षियों के लिए खाने के लिए उनको मिल ही जाता है, कुछ दाने उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, प्रकृति की तरफ से वो अपना पेट भर लेते हैं। उनको शरीर के ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए प्रकृति ने कुछ इस तरह के पंख दिए हैं, कुछ इस तरह के राम दिए जिससे उन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनका शरीर ढक जाता है। प्रकृति की सारी विषमताओं को वो झेल लेते हैं और सिर छुपाने के लिए वो अपना एक घोंसला भी बना लेते हैं। इतना काम तो एक पक्षी भी कर लेता है और हमने भी उतना ही किया। तब हमें तुलना करना पड़ेगी कि पक्षी में और एक मनुष्य में, पशु में और एक मनुष्य में कितना अंतर है। यदि हमने ही वो भोजन वस्त्र और मकान जुटाया जो एक पशु और पक्षी जुटा लेते हैं, तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम मनुष्य की हैसियत से जरूर यहां पर आए, लेकिन हमारे अंदर में वह मनुष्यता प्रकट नहीं हुई, इसलिए कहना पड़ता है कि मनुष्य में और पशु में कोई विशेष फर्क नहीं है। एक समान स्तर पर जीने वाले प्राणी हो गए नहीं, हमें कुछ और ऊपर उठना है, कुछ अपना कदम आगे बढ़ाना है। जीवन के विकास के लिए हम यहां पैदा हो गए थे, न कि जीवन का विनाश करने के लिए। विनाश करने के तो बहुत सारे साधन यहां पर हैं, बहुत सारे साधन ईजाद कर लिए हैं जिससे जीवन का विकास नहीं होता, जीवन का विनाश होता है। जीवन जागृति में नहीं होता बल्कि जीवन प्रमाद में गुजरता है, एक असावधानी के साथ गुजरता है। हमें जीवन निर्वाह मात्र नहीं, जीवन निर्वाह के साथ साथ जीवन निर्माण के भी सूत्र जान लेने चाहिए और जो हमें अपने जीवन में जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन निर्वाह के सूत्र हमारे आचार्य ने बहुत दिखे हैं। जो हमारी भूली हुई संपत्ति, जो हमारा विस्मृत वैभव, जो हमारा और अपना था, उसे हमें पाने की कोशिश करना है। उसे पाने के लिए सबसे अच्छा कोई साधन यदि है तो उसका नाम है धर्म। धर्म के विषय में कल आप एलर्जी से सुन रहे थे, उन्होंने कल कहा था कि धर्म पालन करने की वस्तु नहीं, धर्म धारण करने की चीज है। लेकिन मेरा सोच और कुछ थोड़ा सा अलग हटकर के भी है कि वास्तव में धर्म पालन करने की चीज नहीं, धारण की है। लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म धारण करने की भी वस्तु नहीं है, बल्कि धर्म तो जीने की वस्तु है। जो जितना जीता है वो उतना धर्म को प्राप्त हो जाता है। धर्म कोई नारा नहीं है, धर्म कोई चिल्लाने की वस्तु नहीं है,
धर्म कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, धर्म तो एक जीने की कला है, जीने की एक तर्ज है, जीने की एक लय है, जो जिस तरीके से उस धर्म को जी सके उसके अंदर धर्म, उसका जीवन सार्थक, वो धर्मात्मा, और वो उसका जीवन ही निर्वाण के विकासशील चरम बिंदुओं को प्राप्त कर सकता है। हमें उसे प्राप्त करना है तो हमें सूत्र अपनाना होंगे, धर्म के सूत्र। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, आचार्य और भगवंतों ने हमें सूत्र दिए, अहिंसा और आस्था। भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख सूत्र रहा है अहिंसा और आस्था। जब तक इस धरती के ऊपर अहिंसा और आस्था जीवित है तब तक ही देश का अस्तित्व है, तब तक यहां मनुष्य का अस्तित्व है, तब तक यहां प्राणी का अस्तित्व है, अन्यथा ये मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, ये नारकी से घसबीता हो जाएगा, गायबीता हो जाएगा। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक मान के चलना पड़ेगा कि इस धरती के ऊपर अहिंसा और आस्था जीवित है। यहां दयालु और सिद्धालु लोग भी हैं, हमें भी अहिंसा और आस्था के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेना है। बल्कि यह कहना चाहिए कि हमारा जीवन इस रूप बन जाए, अहिंसा हमारा जीवन बने, आस्था हमारा जीवन बने। यहां भी इतने दिनों जितनी भी बातें की गई वे सब आस्था से शुरू की गई थी, क्योंकि सारा का सारा जीवन आस्था से प्रारंभ होता है, बिना आस्था के यहां जीवन नहीं चलता। इसलिए पहले आस्था की बात कही गई, और आस्था हो जाने के बाद में एक आस्थावान व्यक्ति का क्या जीवन होना चाहिए। यदि उसने धर्म को प्राप्त कर लिया है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये अहिंसा बताती है। आस्था एक धर्म है, रत्नत्रय के लिए हमारे यहां धर्म कहा है, और रत्नत्रय में एक रत्न आस्था भी है जिसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम भी एक धर्म है। और ये धर्म यदि हमने प्राप्त कर लिया है, धारण कर लिया है, यदि हमारे जीवन में उतर गया है, तब पर हमारे जीवन की कोई प्रवृत्ति तो होनी चाहिए। आचार्य परिवार कुंकुंड महाराज ने अपने अध्यात्म ग्रंथ में उस धर्म की प्रशंसा की है, उस धर्म को श्रेष्ठ माना है जिस धर्म के भीतर में धर्मो दया विशुद्ध, ये सूत्र दिया, धर्मो दया विशुद्ध। धर्म वही है, वही धर्म विशुद्ध है, वही धर्म श्रेष्ठ और सार्थक है, वही धर्म उत्तम और सर्वोत्तम है, वही धर्म स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है जिसके भीतर दया है, जो दया से विशुद्ध है, जो दया से सहित है, जो अहिंसा और अनुकंपा से समन्वित है, जिसके अंदर में करुणा के लिए स्थान है, उस धर्म का ही यहां पर महत्व है। अन्यथा बाकी के उस धर्मों की कोई चर्चा यहां पर नहीं। संसार में बहुत सारे धर्म और दर्शन है, लेकिन उन धर्म और दर्शनों की कोई चर्चा नहीं, उन धर्म और दर्शनों का कोई महत्व नहीं। उनका महत्व तभी तक है जब तक कि व्यक्ति के विकास में वो साधक है, जब तक कि उसके जीवन में दया आती है, वो दया का यदि प्रादुर्भाव करता है तो वो धर्म श्रेष्ठ हो सकता है, वो कहीं का और किसी जगह का क्यों ना हो। यदि दया से विशुद्ध है तो हमारी आत्मा के निर्माण में साधक होगा, आत्मा के विकास में एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। तो हमारी संस्कृति में आस्था और अहिंसा ये दो है। जब आस्था हमारे जीवन में आ जाती है तो अहिंसा और दया वो अपने आप हमारी प्रवृत्तियों से प्रकट हो जाती है बाहर में, वही वास्तव में धर्म है। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे लिए दी गई हैं, और उन परिभाषाओं में हमने धर्म को बांध लिया है। अहिंसा की बहुत सारी परिभाषाएं हमें दी, जबकि अहिंसा कोई परिभाषा की वस्तु नहीं है, अहिंसा कोई नारा नहीं है, अहिंसा कोई धर्मांधता नहीं, अहिंसा कोई मजहब और दर्शन नहीं है, बल्कि अहिंसा जीवन की एक कला है, अहिंसा एक लय उत्तर छे, उसे हम जियेंगे तो अहिंसा को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा यह अहिंसा हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। पर हम कह नहीं सकते कि हम श्रद्धालु, हम कह नहीं सकते कि हम आस्थावान हैं। यदि हम आस्थावान हैं तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है, हमारी जो अहिंसा है हमारे पूरे जीवन में उतर जाती है। और एक बहुत अच्छी परिभाषा हमें दी है, नीति कारण दर्शन कारण आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें श्रेयस्कर नहीं है, जो हमें बुरा लगता है, जो कि हमें घातक लगता है, जो हमें पीड़ा का दायक लगता है, ऐसा वह सब कुछ हम दूसरे के साथ ना करें। जो हमें खराब लगता है वो ऐसा हम दूसरे के साथ बर्ताव ना करें। वो जो वचन हमें पीड़ादायक होता है हम दूसरे के साथ ना करें। जो प्रवृत्ति और व्यवहार हमें अच्छी नहीं लगती है वो हम दूसरे के साथ ना करें। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए, इसका नाम ही धर्म है। और यही धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो सकती है। और यह परिभाषा मात्र बाहरी जीवन की नहीं है, यह परिभाषा है कि आंतरिक जीवन में जीने की भी परिभाषा है। आत्मना प्रतिकूलानि, यह हमारे निश्चय की परिभाषा है, यह हमारी यथार्थता में जीने वाली परिभाषा है। कि जो हमें अच्छा नहीं लगता हमें उसे पाना है, उसे प्राप्त कर लेना है, जो ये अध्यात्म की बात है। और परे सामने समाचरे, ये हमारे व्यवहारिक जीवन की परिभाषा, ये हमारे व्यवहारिक जीवन का धर्म है कि वैसा हम किसी दूसरे के साथ ना करें। यही वास्तव में अहिंसा का मूलभूत सूत्र है। यही हमारे जीवन के विकास में और हमारे जीवन के निर्माण में कारण हो सकता है। यदि हमारे जीवन में ये नहीं आया तो हम मनुष्य मनुष्य नहीं है। इसके अभाव में एकमात्र हमारा एक चोला रह जाएगा। आज तो मानव का मात्र शरीर रह गया है। इस मानव के भीतर दानवता के चरण पैदा है और यह मानव आज मालूम ही क्या क्या करने पर उतारू हो गया है। इसकी अस्मियत समाप्त हो चुकी है, इसका अस्तित्व समाप्त होने की तरफ है। ऐसा नहीं है, पूरा समाप्त नहीं होगा, अभी होगा ही नहीं। अभी भी मानवीयता जीवित होगी, वो जीवित रहेगी, लेकिन अधिकारक जो देखने में आ रहा है वो मानवीयता शून्य देखने में आ रहा जीवन है। जहां मानवता नहीं वह मात्र भेष है, वह मात्र दिखावा है, वह मात्र प्रदर्शन है, वह हमारे जीवन की कला नहीं है, वह धर्म और दर्शन नहीं है। एक क्रूर शासक होगा है, आपने नाम सुना होगा, इतिहास में आपने उसे पढ़ा भी होगा, जिसका नाम तैमूर लंग था। वह बहुत क्रूर था। एक बार उसने 3 गुलामों को खरीदा। वो अक्सर ऐसा करता था, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसे अच्छा लगता था। उसने 3 गुलाम खरीदे और एक एक करके तीनों को फांसी की सजा सुना दी और अपने सामने तीनों को फांसी दी जा रही थी। पहले वाले को फांसी दे दी गई, फिर दूसरे वाले को फांसी दे दी गई और तीसरे वाले का नंबर आया तो उसने विचार किया कि सामने वाला व्यक्ति कुछ समझदार सा लगता है, कुछ विद्वान सा लगता है, कुछ जानकार सा लगता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए अभी फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहेंगे, इससे कुछ दो बातें कर लेनी चाहेंगे, हो सकता है कुछ अच्छी बात यहां मिल सके। और उसने तीसरे वाले गुलाम को बुला करके पूछा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुम उसके जवाब दोगे? उस गुलाम ने कहा कि हां देंगे। कहा तो बताओ ये जो 3 गुलाम खरीदे तो इनकी क्या कीमत होगी?
वैसे क्रूर शासक के सामने बोलना बड़ा कठिन था, इतना सरल और सहज नहीं था। और वो बोल गया कि राजन, इन्हें आपने 25-25 सरफियों में खरीदा होगा, इससे ज्यादा इनकी कोई कीमत नहीं है। और वास्तव में गुलाम 25-25 सरफियों में खरीदे गए थे। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि गुलाम, एक प्रश्न और, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी कीमत क्या है? अब तो प्रश्न बहुत बड़ा था, बड़ा जटिल था। ऐसे व्यक्ति की कीमत बताना, मालूम नहीं वो क्या करेगा, लेकिन ये तो मालूम था कि तो फांसी के अलावा और देगा क्या इससे ज्यादा। तो उसने कह दिया, हाँ राजन, मैं आपकी भी कीमत बता सकता हूं। अब भाई किस बात का? और कहा कि बताओ। तो गुलाम बोला कि राजन, आपकी कीमत मात्र 25 सरफियां। तो घूमने लगा। उसने कहा कि क्या कहते हो तुम, जरा हमारी तरफ तो देखो, मात्र 25 सरफियां, इतना मूल्य तो मात्र मेरी इस पोशाक का है जो मैं पहने हुए हूं। हां राजन, मैंने मात्र आपकी पोशाक का ही मूल्य बताया है, पोशाक के अलावा आपका कोई मूल्य नहीं है, आप तो निर्मूल हैं। क्योंकि जिसके भीतर में मानवीयता नहीं है, जिसके भीतर में दया अनुकंपा और करुणा नहीं है, इंसानियत नहीं है, वो व्यक्ति व्यक्ति में उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो निर्मूल होता है। राजन, आपकी कोई कीमत नहीं है, मात्र आपके कपड़ों की कीमत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, धर्मात्मा का भोज बना करके, मंदिर में आते हो, धर्म सभा में बैठते हो, सज्जन लोगों के बीच बैठ करके अपने आप को धर्मात्मा प्रदर्शित करते हो, और हमारे अंदर में धर्मात्मा का अंश भी ना हो? जरा टटोल करके देख लेना। आज बड़ा कठिन हो गया है। किसी ने एक शायर कहे, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहां, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहां, साए हैं आदमी के मगर आदमी का आज मात्र साए दिखाई देते हैं, मात्र वेश दिखाई देते, परिवेश दिखाई देते हैं, इसके अलावा भीतर झांक करके देखते हैं तो हमारे अंदर में, इन मनुष्यों के भीतर में दया का नाम और निशान भी नहीं दिखाई देता। क्या होगा इस मनुष्य का भविष्य में जाकर के, जबकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, हमें जबकि हमें शांति की खोज में निकले हैं, सारा भारत सारा विश्व शांति प्राप्त करने की खोज में, के कहीं ना कहीं से शांति प्राप्त हो, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि व्यक्ति का दिमाग दूषित हो गया है, व्यक्ति का मन और मस्तिष्क दूषित हो गया है, क्योंकि इसका आचार और विचार पूरा परिवर्तित हो गया है। जब तक ये अहिंसा पूरे जीवन में नहीं उतरेगी, तब तक हमारे जीवन जीने की कोई सार्थकता नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। आज यह अहिंसा कहां कहां उतरनी चाहिए हमारे जीवन में, इसके चार पहलू। पहले तो हमारे आहार में, फिर इसके बाद हमारे आचार में, फिर व्यापार में और व्यवहार में। हमारे आहार में अहिंसा, हमारे विचार में अहिंसा, हमारे व्यापार में अहिंसा और हमारे व्यवहार में अहिंसा यदि उतर जाएगी तो पूरा जीवन अहिंसक हो जाएगा। हम धर्मात्मा हो जाएंगे, हमारा विकास होगा, हमारे जीवन का निर्माण होगा, लेकिन आज ये अहिंसा समाप्त है। आज हमारे आहार में अहिंसा नहीं बची। आज शाकाहार की बात करना पड़ती है कि शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से हमारा दिमाग खराब होगा, मस्तिष्क दूषित हो जाएगा, हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, हमारे विचार खराब होंगे। आज आहार विकृत हो गया है, यहां तक कि जैनों के रसोई घर तक में ये दूषित आहार प्रवेश कर गया है। शर्म के साथ कहना पड़ता है आज कि आज हमें अपने चौकी को संभाल करके रखना पड़ेगा। जिस दिन जिस व्यक्ति का चौका समाप्त हो गया, उसका सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे जीवन उस चौकी की नींव पर खड़ा है, उस जब तक हमारा चौका सात्विक है, जब तक हमारा चौकर हमारा हमारी रसोई अहिंसक है, तब तक हमारा जीवन अहिंसक है। ये आहार में अहिंसा होनी चाहिए, हमारे विचारों में अहिंसा। लेकिन आहार में अहिंसा होगी तभी विचारों में अहिंसा आ सकती है, अन्यथा दूसरे प्रहार करने से हमारे विचार दूषित होंगे, हमारे विचार हिंसात्मक होंगे, दूसरे को पीड़ा परेशान करने के विचार होंगे। विचारों को भी पवित्र रखना होगा और हमारे व्यवहार और व्यापार में भी होनी चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम नहीं मिल पाते। महाराज जी कह रहे थे कि हमारे मिलने के तरीके अलग हैं, क्योंकि हमारे चेहरे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जिस जहां जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं हम वैसा चेहरा बना लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे मुखौटे तैयार करके रख लिए। हम जैसी सभा में जाते वैसा एक चोला पहन लेते हैं, एक वैसा मुखौटा लगा लेते हैं। हम धर्म सभा में जाते हैं तो बढ़िया पीले परिधान पहन लेते हैं। जब कभी हम किसी सज्जन पुरुषों के बीच बैठते हैं तो खादी के कुर्ते पहन लेते हैं। जब कभी हम किसी और जगह बैठते हैं तो हमारी पोशाक वैसी हो जाती है, हमारे चेहरे भिन्न भिन्न तरह के हो जाते हैं। वास्तव में हम कैसे हैं इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमने बाहरी चेहरे में अपने आप को मान लिया है, इसलिए हमारे विचार दूषित हो गए, हमारा व्यवहार दूषित हो गया है। हम जब कभी भी इस व्यक्ति से मिलते हैं तो जैसे हम भीतर हैं वैसे बाहर से भी मिलना चाहेंगे। जितना प्रेम हमें अपने बेटों के प्रति होता है, जितना प्रेम हमें अपने वस्त्रों के प्रति होता है, उतना ही प्रेम हमें अपने साधारण व्यक्ति के साथ में भी होने चाहिए, तभी हमारी अहिंसा हमारे व्यवहार में उतर सकती है। और व्यापार में व्यापार की बात मत करना महाराज जी, ये हमारा पर्सनल मामला है, उसमें टच मत करके आप। यदि मैं व्यापार की बात करूं तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे।
उन्होंने देखा कि एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है और वो चने खा रहा है। उसके हाथ में कहीं से उसने चने की पोटली पा ली है, तो वो पोटली उसके हाथ में है और चने खा रहा है वो। और अचानक उसकी पोटली में से एक चना नीचे गिर गया। तब बंदर ने क्या प्रतिक्रिया की? बंदर फौरन पेड़ से नीचे उतरा और उस दाने को खोजने लगा। और इस खोजने के दौरान उसने अपनी पोटली एक तरफ फेंक दी और वो उस दाने को खोजने में लग गया। हताश हुआ, नहीं मिला वो दाना और बहुत दुखी होकर के वो बंदर फिर से पेड़ के ऊपर बैठ के आ कर गया। मैं आपसे पिछले दिनों कई बार ये चीज कह चुका हूं कि अगर कोई संदेश लेना हो तो जीवन में बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं भी हमें संदेश दे जाती है। बोधिसत्व ने राजा से कहा कि देख रहे हो राजन, पूरी भरी पोटली अपने हाथ में लिए था ये बंदर, और जब एक दाना नीचे गिर गया तो उस एक दाने की खोज में इसने अपना समय भी गंवाया, श्रम भी किया और जो पाया था उसे भी खो दिया, और वो भी नहीं पा पाया जो खो गया था। हम सब शायद ऐसे ही कर रहे हैं, जो हमारे पास है उसे निरंतर खोते चले जा रहे हैं, और जो खो जाता है उसे फिर से पाने के लिए व्यथित होते रहते हैं। काश एक बार ऐसा होता कि हम ये समझ जाते कि जो पाने योग्य है वो खोया नहीं जाता, और जिसे खोने का भय है या कि जो खो जाता है वो कभी अपना नहीं हो सकता। अपने और पराये की पहचान, खोने और पाने की प्रक्रिया, बस इतना ही तो शायद जीवन में समझने की चीज है। रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं हम, अपना पराया करते रहते हैं या आज मैंने ये पाया, आज मैंने ये खो दिया। पाए हुए का सुख तो मिलता नहीं, खोए हुए की पीड़ा उससे दुगनी जान पड़ती है। दिन भर ऐसे ही गुजर जाता है। इससे अतिरिक्त कुछ करते हैं हम, हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमने यहां जो पाया है वो हमारे ही किसी कर्म के फलस्वरूप हमें मिला है। यहां जो भी पाया जाता है वो सब कर्माश्रित है। कर्म पर्वशे शांते, अंत सहित भी है, क्योंकि किसी कर्म के आश्रित हमने कुछ पाया है तो उसका एक ना एक दिन अंत भी होगा। और दूसरा गणित भी शायद हम जानते हैं कि जो हम बोते हैं वो हम पाते हैं। लेकिन इस सब जानकारी के बावजूद भी हम शायद इस मुगालते में, इस धोखे में रहते हैं कि नहीं, हम जो सोचेंगे वो होगा। पर शायद हम भूल जाते हैं कि अकेले सोचने से सब कुछ नहीं होता, बिना सोचे भी नहीं होता। भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोचना बंद कर दीजिए, बिना सोचे भी नहीं होता, लेकिन सोच सोच करके भी सब कुछ नहीं होता। आपने सोचा हो कि मैं झील के किनारे जा रहा हूं और आपके कदम जा रहे हों बाजार की तरफ, तो मुझे बताइएगा कि आप झील के किनारे पहुंचेंगे या कि बाजार में पहुंचेंगे। सो डेफिनेट तय है कि आपके कदम जहां जा रहे हैं वहां आप पहुंचेंगे। आप सोच क्या रहे हैं, आपने कल्पनाओं का संसार क्या बना के रखा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो हमने सोचा है अगर हम वो कर रहे हैं तब तो हमारा सोचा हुआ हो सकता है, लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो हमारा सोचा हुआ नहीं हो सकता। हमारा किया हुआ भी सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोच से विपरीत हुआ है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से जा रहा था तो उसको चोट लग गई, पत्थर से बहुत तेज चोट लगी और रक्त निकलने लगा। बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं लोग जब इस तरह की कोई घटना हो जाए, लेकिन उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रक्त निकल रहा था तो मालूम वो क्या कर रहा था, ऊपर हाथ उठा के किसी को प्रणाम करता था और कहता था कि धन्यवाद। तो जो साथ में चल रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि अजीब है तुम्हारा ये व्यवहार, क्या सोच रहे हो इन क्षणों में, जबकि इतनी ज्यादा चोट लग गई है और फिर भी तुम ये किसे प्रणाम कर रहे हो और किसे धन्यवाद दे रहे हो। तो उसने कहा कि मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि कोई एक कांटा मैंने किसी के लिए बोया होगा, आज वो हिसाब चुकता हो गया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरा विश्वास आज इस बात के लिए दृढ़ हो गया है कि मैं जो बोता हूं वो मुझे भोगना पड़ता है, या कि जो मैं भोग रहा हूं वो मेरा ही बोया हुआ है। थोड़ा सा फर्क है, मैं जो बोता हूं वही भोगूंगा, इसमें तो थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन जो मैं भोग रहा हूं वो मैंने ही बोया है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पर इसके बावजूद भी हम दिन भर सिर्फ एक ही काम करते रहते हैं। हमारे मन का हुआ तो लगा कि चलो जिंदगी आसान है, अब तो हम जी लेंगे। हमारे मन का नहीं हुआ तो कब हमारे मन का हो जाएगा, इसकी फिक्र लगी रहती है। और अगर शरीर में कोई व्याधि हो गई तो ये कब दूर होगी, इसकी चिंता में हम पीड़ित रहते हैं। और ज्यादा हुआ तो कभी ख्याल आ गया कि ठीक है, अभी तो सब ठीक चल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये चारों तरह के आर्त ध्यान हमारे जीवन में किस वजह से चलते हैं, कभी आपने सोचा? सिर्फ खोने और पाने का गणित ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से चलते हैं। अभी देख रहा हूं मैं कि जो चीज सामने है, जिस चीज से हमारे जीवन में उसी क्षण परिवर्तन हो सकता है, उसकी फिक्र नहीं है। ये चीज कल फिर जब जो यहां नहीं आ पाए उनके दिखाने के लिए सुरक्षित रह जाएगी, या कि जो हम आज मिस कर रहे हैं उसको देखने के लिए रह जाएगी। आज बीता चला जा रहा है, कल की फिक्र है। ये सारे इंतजाम जो हम करते हैं वो आज को खो करके कल के लिए करते हैं। जो आज खो जाता है उसके जीवन में कल कभी नहीं होता भैया, वैसे भी कल नहीं होता। एक व्यक्ति अपने मित्र की याद में 12 बजे रात को पत्र लिखने बैठा था। सारी रात पत्र लिखता रहा, रोता रहा। जब सुबह उसने आंख उठा करके देखा तो उसका मित्र सामने खड़ा था। उसने उससे पूछा कि कब के आए हो? उसने कहा, जब से तुमने पत्र लिखना शुरू किया तभी से खड़ा हूं, लेकिन तुम्हें पत्र लिखने से फुर्सत मिले तब तो तुम देख पाओगे मुझे। हम भी शायद यही कर रहे हैं। हम जिस क्षण हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए वो क्षण हम चूक जाते हैं। आज हम सुनेंगे कल बदलेंगे। ध्यान रखिएगा, जो जिस क्षण सुन करके अपने जीवन को बदल लेता है उसका सुनना उसी क्षण सार्थक हो जाता। नदी के किनारे पहुंच करके इस बात की फिक्र कि कितना बड़ा घड़ा लेकर के आऊंगा कल इसका पानी भरने के लिए, या इस पर कोई बांध बना के अपने घर के पास से एक नहर निकाल लूंगा, बहुत सारा ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन ऐसा सोच करके तो प्यासा ही लौटा जाता है, जो उसी क्षण जरा सा झुक करके दोनों हाथ जोड़ करके जितनी अंजलि भर करके पी लेता है उतना ही पानी नदी में है, बाकी पानी तो बहुत निकल गया। एक पीछण का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो हमने ये गणित समझ लिया। और अगर हम कल की फिक्र में और इस जीवन को रोज निकालते जाएंगे, रोज खोते जाएंगे, तो शायद हम पाने का गणित तो नहीं समझ पाएंगे, खोने का तो समझ ही नहीं पाएंगे। कभी आपने सोचा कि हमारी अपनी निजी संपत्ति क्या है? नहीं सोचा होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं पाने के लिए, उन्हीं में मन उलझा हुआ है, उसी को हमने संपत्ति मान लिया है और उसी के पीछे हम निरंतर अपनी सांसें गंवाते चले जा रहे हैं। निजी संपत्ति अगर एक बार ध्यान में आ जाए और वो वही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है उसे समझना, वो निजी संपत्ति हमारे भीतर है, जिसको कि देखने की आंख हमने पहले दिन पाई थी, जो हमने अपने भीतर श्रद्धा की आंख पैदा की थी। जब अगले दिन हम बैठे तो हमने अपने मन को थोड़ा सा सरल, सजग और संवेदनशील बनाया था। फिर और अगले दिन हम जब बैठे थे तब हमने विचार किया था कि नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, हमने तो इतने सारे संबंध बना के रखे हैं, उन्हीं संबंधों के बीच में क्या कोई ऐसा संबंध हो सकता है जो हमारी इस श्रद्धा की आंख को खुला रखे? क्योंकि श्रद्धा की आंख एक बार खुल जाना तो आसान है, लेकिन खुली रहना बहुत मुश्किल है। एक बार दर्पण हाथ में आना तो आसान है, लेकिन अगले क्षण वो दर्पण अगर गिर करके टूट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए हमने एक दिन ये भी बैठ करके तय किया था कि नहीं, हम अपने संबंधों में श्रद्धा का भी संबंध बना के रखेंगे ताकि श्रद्धा की आंख खुली रहे। और आज हम बैठे हैं इस बात को तय करने के लिए कि अगर श्रद्धा की आंख खुल गई, हमारा व्यवहार श्रद्धा का हो गया, हमारे संबंध श्रद्धा के हो गए हैं, तो आज हमें अपनी निजी पूंजी भी पहचान लेनी चाहिए, क्योंकि वो निजी पूंजी अपनी श्रद्धा से ही दिखाई पड़ती है। और निजी पूंजी इतनी सी है भैया कि जिसे खोया नहीं जा सकता, वो निजी पूंजी है। जिसे खोया जा सके, जिसके खोने का भय रहे, वो निजी पूंजी नहीं है। इतना ही सा गणित है। सो चाहे जिस दिन अपने मन को तैयार कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा तो आज ही शुरू कर दीजिएगा, कल से करना हो कल कर लीजिएगा, इस जिंदगी में ना करना हो अगली जिंदगी में कर लीजिएगा, पर कर लीजिएगा। करना आपको पड़ेगा, आज नहीं करिएगा कल पर टालते रहिएगा, इस जिंदगी से अगली जिंदगी पर टाल दीजिए। कितनी बार तो टाल चुके हैं हम। एक व्यक्ति बहुत आंधी पानी तूफान में बाहर रोड पर पड़ा हुआ था, उसका घर भी गिर गया था, तो लोग उसको सहानुभूति देने गए थे, उसको पानी से छिड़का तो होश आया, और होश में आया तो उससे कहा कि कैसा है। उसने कहा कि आंधी रुक गई क्या, दो दिन से मैं ऐसे ही पड़ा हूं। उसके हाथ में एक ब्रेड थी, एक रोटी थी। लोगों ने कहा कि बहुत भूखे हो गए, दो दिन हो गए हैं, खा लो ये रोटी। बोले नहीं, कोई भरोसा नहीं, कल क्या होगा, कल के लिए रोटी ये दबा के रखे हुए हैं। अब प्राण कंठगत है, ये हम कल पर स्थगित कर रहे हैं, ये पोस्टपोनमेंट हमारा अपने जीवन के जीने के लिए हम स्थगित कर रहे हैं। जो आज जिया जा सकता था उसे कल जीने के लिए हम कैसे जी पाएंगे, हम इस तरह से कैसे हम अपनी निजी संपत्ति पा पाएंगे, थोड़ा सा इस बात की फिक्र भी हमें करनी चाहिए। और वो हमारे भीतर है, इसके लिए भी हमें अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी करनी पड़ेगी, आप पूछ तो लेंगे मेरे से, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि निजी पूंजी पालो। कोई व्यक्ति किसी से कहे कि पैसे कमाने का ऐसा ढंग है, तो वो पहले नंबर कहेगा कि बताओ क्या क्या उपाय है, दो के तीन बनाने का कोई उपाय हो अगर तो हम कोई भी समझने तैयार हो जाए। आप भी मेरे से पूछ सकते हैं कि निजी पानी चीज पाने का क्या उपाय क्या है। बस वही पाने के लिए तो हम सब ने यहां जन्म लिया है। और अगर हमें ये एहसास हो जाए कि ये पूरा जीवन दांव पे लगा करके भी उस चीज को पाया जा सकता है, तब तो मैं आपसे उसकी बात कर सकता हूं। वरना आधे आधे अधूरे लोगों से जीवन की पूंजी पाने की बात करूं तो वो क्या करेंगे मालूम, जैसे कि अपन करते हैं कि थोड़ा सा तो इसकी तरफ भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। यहां तो सीधा हिसाब है, एक बार मन बना लो के लिए खड़ा कबीरा हाथ में, लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके आपनों सो चले हमारे साथ, हम बताए देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बिल्कुल भी गफलत में नहीं डालेंगे, बिल्कुल परेशानी में नहीं डालेंगे, हम आपको आपकी पूंजी बता देंगे। लेकिन क्या करें, इसके बिना मिलती होती तो अभी तक आपने भी वहीं बैठे बैठे पा ली होती है। इसका मतलब है कि पहले तो अपने भीतर ये एहसास करना पड़ेगा कि जितने हमने अपने चारों तरफ जिन जिन चीजों को अपना मान के रखा है, उनमें जरा गौर से देखें कि क्या वो अपनी है। बस इतना काम शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, यहीं से शुरू कर दें। पहला अपनी पूंजी पाने का पहला काम है, अपने भीतर प्रवेश का पहला काम है, पहला कदम है कि हमें ये एहसास होने लगे। कहने की बात नहीं है, हमें ये एहसास होने लगे कि हाँ, ये जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है। बस इतना सा ही पर्याप्त है क्या? हाँ, दो ही चीजें होती हैं भैया, या तो इस बात का ख्याल आ जाए कि मेरा क्या है, या फिर इस बात का ख्याल आ जाए कि मेरा क्या नहीं है। यहां से शुरू कर रहा हूं कि मेरा क्या नहीं है। एक एक छिलका अगर हम हटाते चले जाए, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी पर है, ये भी पर है, तब स्व की तरफ पहुंच सकते हैं। या फिर अपने स्व को पहचान जाए, अपने स्वभाव को पहचान जाए, तो पर क्या है ये मालूम पड़ना शुरू हो सकता है। तो ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि स्व क्या है और पर क्या है। ये कौन सी नई बात आपने कह दी? मुझे नई बात सिर्फ ये कहनी है, नई क्या, आचार्य भगवंतों ने कही, भूल गए हैं अपन, और कोई नई बात तो कोई कह भी नहीं सकता। एक तीर्थंकर भी दूसरे तीर्थंकर की बात को दोहराता है, हम कौन होते हैं। तब जो अपन कह रहे थे, जो बात आगे बढ़ा रहे थे कि नई बात तो कोई भी नहीं है, पर कुछ ऐसा है जो कि हमसे भूल गया है, वो क्या है। सौ और पर के बीच जो भेद विज्ञान है वो भी हमें हो गया, मान ले हम ये चले मान करके, पर उसका एहसास कैसे हो। एहसास हाथ में हाथ लीजिएगा किसी का और उसी क्षण ये लगे कि सिर्फ सिर्फ जड़ और जड़ पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पृथक हूं, मैं उन्हें देख रहा हूं। भोजन करते समय, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बताऊंगा, भोजन करते समय आहार हाथ में ग्रास है और बहुत प्रिय वस्तु है, और उसी क्षण ये ख्याल आ जावे कि इसको खा करके क्या तृप्ति मिलेगी। खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तृप्ति मिलेगी, बस इतना विकल्प आ जाए, आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगी, निजी संपदा समझने की शुरुआत हो जाएगी। हमने जो जो चीजें जानी है उनको अपने जीवन में घटित करके नहीं देखा है। ये घटित करके देखने वाली प्रक्रिया दूसरे कदम पर है, पहले ये जानना आवश्यक है और फिर उसके बाद उसे घटित होते देखना है। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना दूं, शायद बात और स्पष्ट हो जाए। स्पष्टीकरण तो मुझे कुछ नहीं देना, स्पष्टीकरण तो आपको स्वयं ही अपने से लेना है। एक राज्य में लड़ाई हुई, सारा कुछ तहस नहस हो गया, पर जिसने जीता था उस राज्य को, उसने कहा कि इतना तो मैं कर सकता हूं कि जो हार गए हैं इस राज्य के लोग, वे इस राज्य को छोड़ देवे और अपने साथ जो ले जाना चाहें वो ले जाएं। मृत्यु तो हमें इतना भी मौका नहीं देती कि ले लो भैया, बांध लो, जितना बांध के रखना हो, चलने का वक्त आ गया है। प्रतिशम बीतती सांस तक हमें इस बात का मौका नहीं देती, लेकिन उस राजा ने पता नहीं कैसे मौका दे दिया कि राज्य छोड़ने से पहले जो ले जाना चाहो वो ले जाओ अपने साथ। और लोगों ने, यहां तक कि भिखारी ने भी जितना कुछ था, जितना ज्यादा से ज्यादा समेटा जा सकता था, वो सब समेट करके और एक गठरी बना करके अपने सिर पर रख लिया और चल पड़ा काफला का काफला। जा रहे हैं लोग राज छोड़ करके, लेकिन झुकी हुई ये गर्दन जो जो समेट के रखा है उसके बोझ से, और पीड़ा है चेहरे पर इस बात की, किस बात की, जो छूट गया है, जो लादा नहीं जा सका है, और पीड़ा है इस बात की जो कि ऊपर लदा हुआ है, वो बोझ बना हुआ है, और जो छूट गया है उसकी भी पीड़ा, और जो साथ में आ गया है वो तो पीड़ा दे ही रहा है, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और सब चले जा रहे हैं दुखी पीड़ित, बेमन से, सौ सौ किलो के वजन वाले पैर हो गए हैं, चले जा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी है उनके बीच में जो कि बहुत खुश है, लेकिन जिसके पास कोई बोझ नहीं है, जिसके पास जरा भी छोटी सी गठरी भी नहीं, हाथ में पकड़ने लायक भी नहीं, सिर पे तो छोड़ो। और लोग उसकी तरफ बड़ी दया से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं दया से? सोच रहे हैं बेचारे कि कम से कम हमारे पास तो जितना था उसमें से हम कुछ ला पाए, इसके पास तो लगता है कुछ भी नहीं था। लेकिन लोग इस बात से दंग हैं कि इस आदमी के चेहरे पर शिकन बिल्कुल नहीं है, इसको पीड़ा बिल्कुल नहीं है, लगता है इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा दिमाग भी इसका फिर गया है, दिमाग फिर गया इसका, इसलिए शायद पागलपन में हंस रहा हो। वैसे हंसने का तो कोई मौका ही नहीं है, हम सब लोग तो जो है जो नहीं ला पाए उसके लिए दुखी हैं, और इसके पास तो कुछ है भी नहीं फिर भी ये हंस रहा है, तो जरूर पागलपन का दौरा है। यहां पर हम लोगों के साथ यही तो मजा है, जिसको हंसते देखते हैं तो लगता है जरूर कहीं ना कहीं कोई मुश्किल में पड़ा हुआ है, वरना हंस कैसे सकते बच्चों, यहां तो रो ही जा सकता है। और अगर कोई पूछता है रास्ते चलते कि कैसे हो, तो ये थोड़ी कहेंगे कि तकलीफ में है, तब तो यही कहेंगे कि बहुत आसानी से बहुत मजे में चल रही जिंदगी, आप कैसे हो, तब वो भी मुस्करा के कहता है कि मजे में है। और जब वो मुस्करा के कहता है तो जब उससे विदा लेते हैं तो अपनी मुस्कुराहट झूठी मालूम पड़ने लगती है, उसकी सच्ची मालूम पड़ती लगती है कि ये वाकई लगता तो कह रहा था कि एकदम ठीक है, हम जरूर तकलीफ में है। हमने हमेशा इन रिलेशन टू दूसरे के संदर्भ में हमने अपने खोने और पाने का विचार किया है। तीसरा कदम मैं आपका रखवाना चाहता हूं कि कभी भी अपने पाने और खोने के गणित दूसरे के संदर्भ में मत बिठाना। एक तो खोने और पाने के बारे में स्पष्ट जान लेना कि क्या खोया और क्या पाया जा सकता है, और दूसरा जान लेने के बाद उसे अपने जीवन में घटित होते देखना, और तीसरा कभी भी अपने जीवन में घटित होते देखो तो दूसरे के संदर्भ में नहीं देखना, क्योंकि ये बाहर की चीजें नहीं है जिसके खोने और पाने का गणित दूसरे के संदर्भ में लगाया जा सके, ये तो बहुत आंतरिक चीज है, इसलिए अपने भीतर ही खोने और पाने का गणित लगाया जा सकता है। जब जब भी आप दूसरे के संदर्भ में लगाएंगे तो सिवाय पीड़ा के और कुछ नहीं पाएंगे। और वो लोग जो चले जा रहे थे, पूरा का पूरा काफला जो पीड़ा में था, दो तरह की पीड़ा थी, जो हमें भी आज अपने जीवन में दोनों तरह की पीड़ा है, कि जो सिर पर रखे हुए हैं वो तो बोझ बना हुआ है, और जो नहीं पा पाए हैं वो निरंतर पीड़ा देता चला जा रहा, इसके बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। उस आदमी से जाकर के पूछा कि क्यों भैया, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो, कुछ थोड़ा थोड़ा हम ही से ले लो। उसने कहा बहुत था, पर ये तो जब खोने लगा तब एहसास हुआ कि अगर मेरा होता तो खो कैसे सकता था, इसलिए लाने की जरूरत नहीं समझी, और जो मैं अपने साथ लाया हूं अब उसे मैं कभी खो नहीं सकता, इसलिए मैं खुशी हुई, मुझे हर्ष है इस बात का कि मैं जो अपने साथ लेके चल रहा हूं वो खोया नहीं जा सकता, और जो मैं अपने साथ नहीं ला पाया हूं उसकी मुझे कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि उसे पाने का मुझे भ्रम भी नहीं है, अब उसे पाया ही नहीं जा सकता था। आप अपने जीवन में भी अगर इस तरह की कोई बात करें तो शायद आपको भी इस बात का एहसास होगा कि सचमुच हम जीवन को बहुत आसानी से जी सकते हैं। भैया धर्म हमें जीवन को आसानी से जीने की सलाह देता है, मैं भी आपके बीच इतने दिन से हूं, जितने दिन भी रहूंगा आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि अपने जीवन को आसान बनाइएगा, जीना तो सबको है, हमें भी जीना है, आपको भी जीना है, मैं कोई अलग से यहां जीने के लिए पैदा नहीं हुई हूं, लेकिन थोड़ी सी बात मेरे को मालूम पड़ गई है कि जीवन को हम जैसा जीना चाहेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल हम जैसी तय करेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए जैसे बने तैसे अपने जीवन को जीने के लिए आसान बनाते चले जाएं, और आसान बनाने का इतना सा ही काम है कि श्रद्धा की आंख पैदा कर ले, पैदा हो गई हो तो संबंधों में श्रद्धा को घटित करें, और संबंधों में श्रद्धा पैदा हो गई हो तो खोने पाने का गणित समझ लें बस, और इससे अधिक मेरे ख्याल से जानने के लिए तो बहुत है, पर करने के लिए तो शायद इतना ही पर्याप्त है। मैं भावना भाता हूँ आप सबके लिए, मैं अपने लिए भी, क्योंकि इतनी देर से मैं भी सुन रहा था, आप तो सुन ही रहे थे, मैं पहले सुन रहा था, आपसे पहले मैंने सुना है जो कुछ भी मैंने कहा है, आपने सुन पाया कि नहीं सुन पाया मैं नहीं जानता। अगर थोड़ा बहुत भी आपने सुना हो और थोड़ा बहुत भी इसमें से अच्छा लगे, फिर पता नहीं कब बैठेंगे, कोई नहीं कह सकता। आप कह सकते हैं कि कल बैठेंगे? नहीं कह सकते हैं। कौन लोग यहाँ आज बैठे हैं, क्या वो कल बैठ पाएंगे? कोई नहीं जानता। तब क्यों ना हम इस एक दिन को पूरा का पूरा पूरी तरह से जी लें, तो शायद कल का दिन हो नहीं भी हो तब भी हमें असंतोष नहीं रह जाएगा जीवन से। ये तो तब समझ में आता है जब सांस पूरी होने लगती है कि जीवन किस तरह से खो दिया हमने, जो पाने लायक था वो नहीं पा पाया। पीड़ा इस बात की न रह जाए, आज ही अगर ये बात समझ में आ जाए कि जो पाने लायक था अरे वो तो पा ही नहीं पाया, जो खोने लायक था उसी को भी हम नहीं खो पाए, उसी को ही पाना मानते रहे, अगर इतना भी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। मैं भावना भाता हूँ आप भी अपने जीवन को आसान बनाने की भावना भाएं। ऐसी सद्भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
तक अत में विष कंटक भूत